नमस्कार भारत, 23 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव।
कांग्रेस के नेतृत्व, वो अकड़पन, वो अभी भी इतिहास में जिंदा है, वैसा आज की स्थिति नहीं है।
लेकिन ये देखना होगा कि जो पिछड़ी जातियों के वोट है वो कांग्रेस कैंडिडेट्स को मिलेंगे क्या।
चुनाव से पहले आम बजट लाने की मोदी सरकार की योजना के खिलाफ जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई।
बीजेपी आने वाले 5 स्टेट का जो इलेक्शन शुरू हो गया उसमें फायदा उठाना चाहती है। जितने भी आदमी चाहे वो 5 स्टेट के, इंडिया में हर व्यक्ति इफेक्ट तो होगा ही होगा बजट घोषणा से।
सुनिए दर्द पंजाब के उन किसानों का जिनके खेत पाकिस्तान की सीमा के पास हैं।
परेशानी है भी BSF वाले सानूं जदों भी टाइम हो जांदा अगे नहीं जांदे, फसल पक्की हुंदी है ते कटण दा टाइम नहीं देंदे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होगा। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर कई दौर की बातचीत हुई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल में अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम ले जाने के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। इसराइल में सरकार ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन फलस्तीनी लोग यरूशलम में अमेरिकी दूतावास का विरोध कर रहे हैं। इसराइली कानून के मुताबिक यरूशलम देश की राजधानी है, लेकिन इस पर फलस्तीनी भी अपना दावा पेश करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और उन्हें अगले महीने अमेरिका आने का न्योता दिया, जिसे नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले इसराइल की सरकार ने पूर्वी यरूशलम में 560 नए घरों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसराइल के अधिकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण तक ये फैसला रोक कर रखा गया था। इस पर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हनान अशरवी ने ये कहा,
बाय टारगेटिंग स्पेसिफिकली जेरूसलम,
ट्रंप के चुनाव प्रचार में यरूशलम का बार बार जिक्र और यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देना इस शहर पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे को मान्यता देने के बराबर है। इससे इसराइल को पूर्वी यरूशलम को पूरी तरह घेरने का मौका मिल जाएगा, खास तौर पर रमात इश्कोल और रमोत इलाके, क्योंकि ये फलस्तीनी इलाकों को फलस्तीन के माहौल से काटने में मदद देगा। इससे पश्चिमी तट बढ़ जाएगा और फलस्तीनी राष्ट्र को भी बनने से रोका जाएगा। ये थे हनान अशरवी के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। वेनेजुएला में नए नोट लाने में कई हफ्तों की देरी के कारण राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष को हटा दिया है। वेनेजुएला इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है और यहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगाई दर है। इसी वजह से नए नोट लाने की घोषणा की गई थी। वेनेजुएला में हाल ही में सबसे ज्यादा चलन में आने वाले 100 बोलीवर के नोट को वापस ले लिया गया था। नए नोट तैयार नहीं होने की वजह से वेनेजुएला की सरकार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अफ्रीकी देश गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एडामा बैरो के एक सलाहकार ने आशंका जताई है कि जब से पूर्व राष्ट्रपति यहिया जमे सत्ता छोड़ कर गए हैं तब से सरकारी खजाने से 1 करोड़ से ज्यादा डॉलर की राशि गायब है। माय अहमद फैटी ने कहा कि सेनेगल की राजधानी में उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि वित्तीय विशेषज्ञ आर्थिक घाटे का आकलन कर रहे हैं।
Within the period of 2 weeks alone, nearly $500 million.
दो हफ्तों के समय में ही पूर्व राष्ट्रपति और उनकी सरकार ने करीब 50 करोड़ डेलसिस निकाले हैं। ये काफी पैसा होता है क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 20 करोड़ डेलसिस खर्च करते हैं, इस लिहाज से ये बहुत पैसा है। ये थे माय अहमद फैटी के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चिली के जंगलों में लगी कई दशकों की सबसे भयंकर आग को बुझाने के लिए करीब 1200 सैनिकों और 500 फायर फाइटरों को लगाया गया है। चिली की सरकार ने फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देशों से मदद मांगी है। चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट ने कहा है कि जंगलों की आग बुझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है और अब विशेष विमानों और हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। पिछले हफ्ते देश के मध्य और दक्षिणी इलाकों में लगी आग का धुआं राजधानी सैंटियागो तक पहुंच रहा है। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। खेल के मैदान और राजनीति के अखाड़े में कब क्या होगा दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। तभी तो कल ईडन गार्डन में जीत की दहलीज पर पहुंचकर भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से 5 रन से हार गई। और उधर राजनीति के अखाड़े में कल तक सीटों के बंटवारों पर जोर आजमाइश कर रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आखिरकार हाथ मिला ही लिए। लखनऊ में कैमरों की चमक के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर कुछ इस तरह मिले जैसे दो पुराने दोस्त फिर से एक हो गए हों। आइए सुनते हैं पहले राज बब्बर ने क्या कहा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा राजनीतिक और वैचारिक ताकत भाजपा की ध्रुवीकरण करने वाली विभाजन और विघटनकारी नीतियों को मजबूती से चुनौती देगी।
और आइए अब सुनते हैं राज बब्बर से पहले नरेश उत्तम ने क्या कहा।
हम समाजवादी पार्टी के 298 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेंगे, वही हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। ये सीटों का बंटवारा नहीं, दोनों दलों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक नई सुबह की शुरुआत होगी।
उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब साफ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा चुनौती है। जो नई तस्वीर उभर कर सामने आ रही है इस गठजोड़ से इसके क्या मायने हैं और ये गठबंधन किस ओर इशारा करता है, यही समझने के लिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अंबिकानंद सहाय और रशीद किदवई से बात की।
दोनों दल को निश्चित रूप से फायदा होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अखिलेश के अभी बगावती तेवर के बाद ऊंची जातियों का भी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ रहा था, कांग्रेस के आने से वो और स्पीड पकड़ लेगा। दूसरी तरफ मुस्लिम कंसोलिडेशन डेफिनेटली अब समाजवादी पार्टी या अलायंस कैंडिडेट्स की ओर रुझान बढ़ेगा। मैं मानता हूँ दोनों दलों को फायदा निश्चित होगा।
अंबिकानंद जी, अब जी। तीन खेमे हैं, एक कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा। राज्य में जो सियासी खेल है वो किधर जा रहा है या फिर चीजें कैसे बदली हैं इस अलायंस से?
कांग्रेस के नेतृत्व जिसको हम वैनिटी कहते रहे हैं कि वो अकड़पन वो अभी भी इतिहास में जिंदा है, वैसा आज की स्थिति नहीं है। वैनिटी की जगह सैनिटी चाहिए और अब मेरा ख्याल है अब सैनिटी आया है। उनको अपनी हैसियत अपने औकात का पता है, जमीनी ताकत। मेरा सिर्फ इतना कहना है नेतृत्व दोनों दलों की चाहे जो कहे लेकिन दोनों के जो जेन्युइन समर्थक हैं वो ईश्वर से यही कामना कर रहे थे कि अगर इनको जीतना है तो साथ आना होगा और ये साथ आए हैं। मेरा अपना मानना है कि दोनों को जबरदस्त लाभ होगा।
ऋषि जी, आप इस पे एग्री करेंगे? क्योंकि क्या जो सोच रही है राहुल गांधी की हमें पार्टी को जमीन से खड़ा करना है, अकेले जाने के क्या नुकसान ज्यादा होते?
देखिए, एक राजनीतिक दल के सामने चुनौती होती है कि वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए या जिसे कहते हैं कि जैसे सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कुछ तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो कांग्रेस ने ये दूसरा जो व्यवहारिक मॉडल है वो अपनाया है। देखना कागज के ऊपर बिल्कुल अंबिकानंद जी बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं कि एक एज नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि जो पिछड़ी जातियों के वोट हैं वो क्या कांग्रेस कैंडिडेट्स को मिलेंगे, क्या वोट ट्रांसफर होगा। माइनॉरिटी वोट की बात हो रही है तो माइनॉरिटी वोट तो हम समाजवादी पार्टी में भी देखते हैं कि बहुत से जिलों जो होता है वो बैकवर्ड वोट जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को ट्रांसफर नहीं होता है, तो इस तरह की कई तरह की समस्याएं हैं। देखिए, बसपा के साथ जो दलितों की जो उनकी मजबूती है और कुछ माइनॉरिटी वोट उनको भी जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि जो भाजपा के लिए एडवांटेज बने कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए और मजबूत बसपा और मजबूत समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस वो एक ऐसा सिचुएशन करें कि दोनों की सीटें पर्याप्त ना हो और भाजपा को जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का लाभ मिले।
रशीद जी, कि ये जो मुसलमान वोट को हम कई बार बड़ी सिंपलिस्टिकली डिफाइन करते हैं क्योंकि बसपा ने भी करीब 100 के आसपास कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, ये इधर जाएगा उधर जाएगा जिस तरह से मुसलमानों के बारे में कहते हैं, ये क्या सच होगा यूपी को लेकर?
देखिए, जो मेरा आकलन है मुझे लगता है कि मुसलमान बहुत ध्यान से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति देखेगा और वो देखेगा हवा किस तरफ चल रही है। हवा भाजपा की अगर तेज चली तो मुसलमान एक मजबूती देखेगा, और मजबूती में उसे देखेगा कि कहाँ क्या बसपा के साथ दलित और जो दूसरे समाज के वर्ग हैं वो क्या जुड़ रहे हैं, तो उधर भी बसपा को भी समर्थन मिल सकता है। दूसरी तरफ जैसा अंबिकानंद जी कह रहे हैं, एक इनकी नॉवेल्टी फैक्टर है अखिलेश यादव की, बहुत सारे प्लस पॉइंट है युवाओं का। अगर मुसलमानों को लगा कि अखिलेश यादव जो है वो भाजपा को रोकने में या हराने में कामयाब हो सकते हैं तो उस तरफ जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए सीटों के बंटवारे और उसके संभावित नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और अंबिकानंद सहाय। और आइए अब सीधे चलते हैं लखनऊ हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास और जानते हैं वहां से छपने वाले आज के अखबार क्या कह रहे हैं।
जी संदीप, जाहिर सी बात है कि आज के लखनऊ के अखबारों में ये प्रमुखता से यही खबर छपी हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है। लगभग सभी अखबारों ने उसी को अलग अलग हेडलाइंस के साथ जगह दी है। अगर बात करें अमर उजाला की तो लिखता है आखिर सपा कांग्रेस एक साथ। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है कि आखिर साइकिल पर सवार हो गई कांग्रेस। नवभारत टाइम्स ने ये नवभारत टाइम्स की ही अगर बात करें तो और दूसरे भी अखबारों में इस गठबंधन के अलावा जो दूसरी प्रमुख खबर चर्चा में है वो कल जो शाम देर शाम बीजेपी की 155 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसकी चर्चा भी अखबारों में है। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गठबंधन को लेकर के अखबारों ने किस तरीके से अपनी टिप्पणियां दी हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान की भी यही लीड खबर है, वहां लिखता है सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान, 298 सीटों पर सपा, 105 पर कांग्रेस लड़ेगी। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि एसपी एंड कांग्रेस सील यूपी पोल पैक टू कीप बीजेपी बीएसपी एट बे, यानी भाजपा और बहुजन समाज पार्टी को किनारे रखने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया गठबंधन। अखबार ने इस पूरे गठबंधन का जो श्रेय है वो एक तरह से प्रियंका गांधी को दिया है। दूसरे अखबारों में भी इस बात की चर्चा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कांग्रेस चीयर्स प्रियंकास पॉलिटिकल लॉन्च। ऐसा कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन इस भूमिका को निभाने में खासतौर पर जो गठबंधन के दूसरे दौर की चर्चा हुई जिसमें बार बार बनता बिगड़ता दिख रहा था तो उसमें कमान संभाली थी प्रियंका गांधी ने और आखिरकार उस गठबंधन को एक अमल में लाने में उनको सफलता मिली। और दूसरी जो चर्चा हम लोग तो इस तरह से लगभग सभी अखबारों में इस पर गठबंधन को लेकर के ही चर्चा है। दैनिक जागरण ने बड़ी दिलचस्प एक हेडिंग लगाई है, उसका भी जिक्र करना मुझे जरूरी लग रहा है। लिखता है अखबार की खुली गांठ हुआ गठबंधन।
बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र लखनऊ से अखबारों की समीक्षा कर रहे थे।
संदीप आपसे एक 10-20 सेकंड का समय हम जरूर जरूर जरूर, क्योंकि जनसत्ता में एक बड़ा दिलचस्प कार्टून छपा हुआ है जो कल समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ उसको लेकर के, उसमें लिखा है कि अखिलेश का घोषणा पत्र गरीबों को प्रेशर कुकर, हर महीने 1 किलो देती ही मिलेगा। और चूंकि उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर गरीबों को बांट चुकी है तो उनकी एक तस्वीर लगी हुई है और अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र के साथ एक महिला से कह रहे हैं कि खाली गैस से क्या होगा, पकाने के लिए बर्तन और घी तेल भी तो चाहिए।
हाँ, और दोनों पार्टियां कुछ दिन बाद साझा घोषणा पत्र भी जारी करने वाली हैं, तब देखना होगा कि उसमें क्या कुछ घोषणाएं होती हैं। बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र आपका लखनऊ से समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं मोदी सरकार इस बार आम बजट विधानसभा चुनावों से पहले 1 फरवरी को पेश करना चाहती है, लेकिन सरकार की इस मंशा पर सवाल उठ रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले एमएल शर्मा से बात की और जानना चाहा कि आम बजट 1 फरवरी को आए ना आए, आए तो इसमें उन्हें क्या गलत नजर आता है, क्या आपत्ति है उन्हें।
संविधान के अंदर कहीं भी ये नहीं दिया है कि फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत साफ है आर्टिकल 112 में कि भविष्य का बजट, वर्तमान का जो सत्र है फाइनेंशियल ईयर, उसमें पेश नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 112 कहता है। दूसरा, बीजेपी आने वाले पांच स्टेट का जो इलेक्शन शुरू हो गया उसमें फायदा उठाना चाहती है, एडामेंट हो चुकी है, जहां तक कि वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो चाहती है कि वो बजट पेश करे और जितने भी आदमी चाहे वो पांच स्टेट के हो, इंडिया में हर व्यक्ति इफेक्ट तो होगा ही होगा बजट से, घोषणा करने से, सब कुछ करने से, और बजट की घोषणा से वो लोगों के ध्यान को आकर्षित करके चुनाव भी जीतना चाहती है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट भी है कि एक जिस दिन इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, घोषणा कर देता है चुनाव का, उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर बीजेपी घोषणा करती है किसी भी तरह से, बजट को भी लाती है, तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी वायोलेशन होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायोलेशन होगा और संविधान के प्रोविजन का भी वायोलेशन होगा, उसका भी उल्लंघन होगा 112 का। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से दो प्रेयर करी है कि संविधान के अनुसार बजट अप्रैल में आना चाहिए, जिस साल का बजट है उसी साल के फाइनेंशियल ईयर में आना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है।
ये थे एमएल शर्मा, जिन्होंने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की मोदी सरकार की योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। और आइए अब चलते हैं सीधे पंजाब और जानने की कोशिश करते हैं उन किसानों का दर्द जिनके खेत पाकिस्तान से लगने वाली सरहद के पास हैं।
भारत पाकिस्तान की सीमा से गुजरती हुई रावी नदी के किनारे का ये गाँव साहोवाल है और मैं यहाँ पर पंजाब के विधानसभा के चुनाव के दौरान इस जगह पहुंचा हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे कुछ ही दूर पर भारत और पाकिस्तान की सरहद लगती है। यहाँ पर ये किसान हैं बहुत सारे जो इस जगह के रहने वाले हैं, इनकी खेती सरहद के जो कांटे हैं तो कुछ ही दूर के बाद है, उसके उधर उनकी खेती है। और पिछले कुछ दिनों से जो चुनावी माहौल है पंजाब का वो काफ़ी मज़ेदार होता जा रहा है, क्योंकि इस बार लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में यानी अपने घोषणा पत्र में सरहद के किसानों की बात कही है। सरहद के किसान यहाँ से जब जाते हैं तो परमिट होते हैं सबके पास और एक फिक्स टाइम के अंदर उनको वहाँ पर काम करना पड़ता है और फिर उस दौरान वापस आ जाना पड़ता है। लेकिन गांव के लोगों का और किसानों का ये कहना है कि सरहद पर रहना और खेती करना दरअसल घाटे का सौदा है। क्यों घाटे का सौदा है ये बताने के लिए यहाँ गाँव के बहुत सारे जो ये पिंड जिसे कहते हैं पंजाबी में, उसके लोग यहाँ जमा हैं। साहब ये बताइए कि खेती किसानी घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है आपके लिए?
ते जी घाटे का है, वक्त तो घाटे का ही है।
घाटे का है क्यों?
क्यों भी टाइम ना किसी जान नहीं देंगे तरह तो अगे तो टाइम ना ही उतो कट देंगे।
ये कह रहे हैं कि टाइम से जाने नहीं देते, लेकिन जो वक्त घोषित किया गया है वो 8 बजे से 5 बजे का है। 8 बजे आप अंदर नहीं जा सकते वहाँ पर?
9-10 बजे तो बाद,
10 बजे के बाद
ते 4 बजे फिर वापस,
4 बजे फिर वापस। और क्या परेशानियां हैं उधर?
जानवर बहुत है, सूर या वो जो पाड़ा बोलते हैं उसको हरना वो खा जाते
हैं।
हाँ वो खा जाते हैं।
लोगों को परेशानी है क्योंकि जो जंगली सुअर है वो फसल बर्बाद कर देते हैं, वहाँ पर हिरन है जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, क्योंकि यहाँ तो कांटे लगे हुए हैं बीच में, इसलिए उधर जो इनकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। ये बताइए कि क्या मुआवजा मिलता है, चूंकि घोषणा हुई थी कि जो
कोई नहीं मिल रहा थे इतने, बस खराबी है जी तार है, लेकिन बॉर्डर तो बहुत अंदर इन्हें ला रखी है, पिछे ला रखी है अपने एरिए, अपना एरिया उधर रह गया वो जंगली दरा है। तो बाकी परेशानी है भी BSF वाले सानू जो भी टाइम हो जाता अगे नहीं जाते, फसल पक्की होंगी है तो कट्ट का टाइम नहीं देंगे, फसल उत्थे ही खराब हो जाती है, तो खराब हो जाए सू मुआवजा नहीं मिलता।
ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता है उधर जाकर अपनी खेती करने का, सही से फसल काटने का भी वक्त नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि फसल सड़ जाती है और फिर इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये मुआवजे की बात जो मैं कह रहा था कि आपको शायद याद होगा कि पिछले दिनों 2 बार ऐसा हुआ कि 3500-3500 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई थी जिनकी जमीन है।
साढ़े पिंड की हैगी है देश आम लाट, वो लोग पुटी है, वो किसी ने पंचायत के ना कराती है, साढ़े ना सरकार वायदे कर दी, वादा पूरा नहीं कर दी,
सरकारें वादा पूरा नहीं करती हैं, ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता है कि हमेशा पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, तो क्या आप लोगों को उसका सामना करना पड़ता है उस तनाव का?
हाँ बहुत ज्यादा।
कैसे?
ये मुश्किल आती है जब जो भी माहौल खराब होते हैं, हमको बोलते हैं आप पीछे चलो जाओ, पीछे हमारा तो पीछे जगह नहीं है, कहाँ जाके बैठेंगे, सर सर परिवार लेके भैंसे लेके कहाँ जाएंगे, इधर इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे, इधर सबको हमारा खेत ही इधर है तो किधर जाएंगे।
तो एक ये है पूछ रहे सवाल कि जब खेत यहाँ है तो कहाँ जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि जो फेंस लगी है 11 मीटर उधर का इलाका, 11 फीट उधर का और 11 फीट इधर का इलाका है, ये भारत के इलाके में, लेकिन ये जमीनें भी एक्वायर की गई थी 1989 में जब सरहद पर फेंस लगाए जा रहे थे। तो क्या उसका मुआवजा मिला लोगों को जिनकी जमीनें गई?
बिल्कुल कुछ नहीं मिला जी, बिल्कुल कोई एक पैसा भी नहीं मिला।
اب یہ میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو یہ زمینیں نو مینس لینڈ کی ہیں, مطلب ادھر بھی تو جہاں پہ جھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ پلر لگا ہوا ہے بھارت کا, آپ جب کھیتی کرنے جاتے ہیں فینس کے پار, تو وہاں نو مینس لینڈ ہے, تو اس میں بھی بھارتی کسانوں کی زمینیں گئی ہیں؟
ہاں جی, زمین ادھر ہے.
تو ان کا معاوضہ ملا؟
نہ جی, کوئی نہیں ملا.
وہ معاوضہ بھی نہیں
ملا؟
تو دوسری بات یہ ہے, ادھر آئیے, آپ نوجوان ہیں, میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو بہت ساری زمین ہے جو سرکاری زمین ہے جس پر کھیتی کرتے تھے کسان یہاں کے, تو کیا ان کا مالکانہ حق مل پایا کسانوں کو؟
نا جی, نا ہی کے کہ کو حق نہیں ملیا.
تو 1950 سے کھیتی کر رہے ہیں نا؟
ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
تو یہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوا؟
نہیں جی, ہمارے نا ہی نہیں ہے. جڑا کوئی منتری بن جاتا وہ بولتا ہے کہ ہمیں کٹا لیں گے کھیتی, جو جو شام لاٹ کی جو جڑی بھی ہے اپنے نہ کروائیں گے.
بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا اس طرح کے جو کھیت ہوتے ہیں کیا اس پر لون ملتا ہے کیا بینک سے؟
کچھ نہیں جی ملتا, کچھ نہیں ملتا
بینک سے لون. ہاں
جی, کچھ نہیں جی ملتا, وہ تو ہڈے اپنے ہیں, جنہ گوالو گے انہ کھالو گے بس جی, اور کچھ نہیں.
یہ تھے پنجاب کے وہ کسان جن کے کھیت پاکستان کی سرحد کے آس پاس ہیں, ان سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواد داتا سلمان راوی. اور اب گیان کی باتیں. کہتے ہیں کہ گیان جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے, لیکن کہیں کہیں گیان بٹ نہیں رہا بلکہ لٹ رہا ہے. کہاں اور کیسے, سنیے پاکستان سے وسط اللہ خان کی زبانی.
سورگیہ راشٹرپتی جنرل ضیاء الحق نے ایک کارنامہ یہ بھی کیا کہ پاکستان میں اسلامک سائنس کا پریچے کروانے کے لیے دو بڑی انتر راشٹری کانفرنسیں کروائیں, ایک 1983 میں جس کا سارا خرچہ ہماری جیب سے گیا, اور دوسری 1987 میں ہونے والی اسلامک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانفرنس جس کا آدھا خرچہ یعنی $400,000 سعودی سرکار نے دیا. دونوں کانفرنسوں میں پاکستان اور دوسرے مسلم دیشوں کے سائنسدانوں نے 100 سے ادھک سائنٹیفک پیپر پڑھے. قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمد مطلب نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی بکواس ہے. اصل میں تو پرتھوی اپنے برامن پتھ پہ اس لیے ٹھیک ٹھیک گھوم رہی ہے کیونکہ پہاڑوں نے پرتھوی کے سینے پہ پیر جما کے اس کا سنتولن بنا رکھا ہے. اگر پہاڑ اڑ جائیں تو پرتھوی بھی انترکش میں سوکھے پتے جیسے اڑنے لگے اور سرما ہو جائے. پاکستان کاؤنسل آف سائنس اینڈ ریسرچ کے ڈاکٹر ارشد علی بیگ نے کسی سماج میں چھل کپٹ کی ماترا ناپنے کے لیے ایک گنت یا فارمولے سے ثابت کیا کہ پچھمی دیشوں میں چھل کپٹ کا لیول 22 ہے, مگر ایک پچھمی دیش پرتگال میں 14 ہے. پاکستان میں چھل کپٹ کی کیا ماترا ہے ڈاکٹر صاحب بتانا بھول گئے. ڈیفینس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سنستھا کے ڈاکٹر صفدر جنگ راجپوت نے بڑے انوسندھان کے بعد ثابت کیا کہ ماس سے بنے انسان کے ساتھ ساتھ آگ سے بنے جن بھی ہمارے آزو بازو رہتے ہیں, مگر ان سے دھواں اس لیے نہیں نکلتا کہ ان کا جسم میتھین گیس سے بنا ہے. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ایک ویگیانک بشیر الدین محمود کے پیپر کا نچوڑ یہ تھا کہ جن چونکہ آگ سے بنے ہیں, اگر انہیں کسی طرح قابو کر لیا جائے تو ان کی انرجی سے بھاری سنکھیا میں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. مجھے یہ پرانی سائنسی ریسرچ ہندوستان ٹائمز میں پچھلے ہفتے چھپنے والی اس رپورٹ سے یاد آ گئی جس کے انوسار دلی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ہیومن ریسورس اور سائنس کے یونین منترالوں کے پیسے سے ایک ورکشاپ کی جس میں 200 سائنسدانوں نے اس بات پہ سر جوڑا کہ پنچ گاوا کے انسانی فائدوں پہ ریسرچ کے لیے الگ سے گاؤ وگیان وشو ودیالے بنایا جائے. اس ورکشاپ میں اتراکھنڈ کے ویٹنری پروفیسر آر ایس چوہان نے 4 گایوں پہ تجربہ کر کے ثابت کیا کہ گائے کے پیشاب سے کینسر کا علاج سمبھو ہے. راجستھان کی شکشا منتری واسودیو دیونانی نے کہا کہ گائے اکیلا پشو ہے جو آکسیجن اندر لے جاتا ہے اور آکسیجن ہی باہر نکالتا ہے. مجھے لگتا ہے اگلے ورش کا نوبل پرسکار شری واسودیو کے لیے پکا. میں تو سمجھا تھا کہ گیان جنرل ضیاء الحق کی اسلامک سائنس کانفرنسوں سے شروع ہو کے نریندر مودی کی گنیش جی کے سر کی پلاسٹک سرجری والی سائنٹیفک تھیوری پہ ختم ہو گیا ہوگا, مگر میں شاید غلط سوچ رہا تھا. گیان تو وہ دولت ہے جسے جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے. اس اعتبار سے بھارت اور پاکستان میں گیان بٹ نہیں رہا بلکہ لٹ رہا ہے.
یہ تھے پاکستان سے وسط اللہ خان. اور اب ہر سوموار کی طرح ساپتاہک انک کھیل کھلاڑی.
کھیل اور کھلاڑی کاریکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت.
कार्यक्रम की शुरुआत बैडमिंटन से। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर बेहतरीन अंदाज में साल की शुरुआत की। शीर्ष वरीयता के साथ खेलने वाली साइना नेहवाल ने फाइनल में गैर वरीयता हासिल थाईलैंड की पोम्पावी चोचुवांग को 46 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 22-20 से मात दी। दुनिया भर के जाने माने खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में साइना नेहवाल का टूर्नामेंट खेलना और उसे जीतना सही रणनीति मानते हैं भारत के पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना।
मिडिल लेवल के खिलाड़ी उन्होंने भाग लिया, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि इस तरह की टूर्नामेंट अगर आप जीतते हैं तो ये आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तो इसमें ये टूर्नामेंट जीतना मैं समझता हूँ कि इनके लिए एक अच्छा स्टेप था।
और अब बात क्रिकेट की। आखिरकार इंग्लैंड ने कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 5 रन से हराकर इस दौरे पर अपनी पहली जीत हासिल की। भारत के सामने जीत के लिए 322 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 316 रन बना सका। भारत के केदार जाधव ने 90 रन बनाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 56, कप्तान विराट कोहली ने 55 और युवराज सिंह ने 45 रन बनाए। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 63 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके बावजूद भारत 2-1 से ये सीरीज जीतने में कामयाब रहा। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 321 रन बनाए। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने लगातार तीसरा अर्धशतक जमाते हुए 65 रन बनाए। उनके अलावा सैम बिलिंग्स ने 35, जॉनी बेयरस्टो ने 56 और कप्तान यान मॉर्गन ने 43 रनों की धुआंधार पारी खेली। उसके बाद बेन स्टोक्स ने नाबाद 57 और क्रिस वोक्स ने 34 रन बनाकर टीम को बेहद मजबूती दी। भारत के हार्दिक पांड्या ने 49 रन देकर 3 और रविंद्र जडेजा ने 62 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और अब बात टेनिस की। इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में कल तब बड़ा उलटफेर हुआ जब पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे गैर वरीयता हासिल जर्मनी के मिशा ज़वेरेवे के हाथों 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 से हारकर चौथे दौर में ही बाहर हो गए। दूसरी तरफ सदाबहार 17वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने 5वीं वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी को 6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 से हराकर अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखा। महिला एकल वर्ग में रूस की अनस्तासिया पावलचिन्युकोवा ने अपनी ही हमवतन स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा को 6-3, 6-3 से और अमेरिका की वीनस विलियम्स ने जर्मनी की मोना बार्थिल को 6-3, 7-5 से हराया। महिला युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा का अभियान तीसरे ही दौर में तब समाप्त हो गया जब उन्हें जापानी जोड़ी इरी होजोमी और मियुकातो ने 6-3, 2-6, 6-2 से मात दी। लेकिन भारत के लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने मिश्रित युगल वर्ग में जीत के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
खेल खिलाड़ी के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल में अमरीकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम ले जाने के बारे में बातचीत शुरू हुई है। इसराइल की सरकार ने पूर्वी यरूशलम में 560 नए घरों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। वेनेजुएला में नए नोट लाने में कई हफ्तों की देरी के कारण राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष को हटा दिया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एडामा बैरो के एक सलाहकार ने आशंका जताई कि जब से पूर्व राष्ट्रपति यहिया जमे सत्ता छोड़कर गए तब से सरकारी खजाने से 1 करोड़ से ज्यादा डॉलर की राशि गायब है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।